समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में ठीक 4:30 बजे हैं और यह समय है आपकी अपनी न्यूज मैगजीन परिक्रमा का। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हम लाएंगे आप तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या खास है उनके पास। खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर। इसके अलावा हम बात करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तित्व की जिनकी आज है पुण्यतिथि या जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के आज के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट दोस्त सिद्धार्थ सिंह और मेरे साथ हैं मेरे को होस्ट वीसी प्रमोद। सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार और प्रमोद, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू।
वेरी गुड आफ्टरनून टू यू ऑल्सो सिद्धार्थ। इट्स वंडरफुल लिसनिंग टू योर मेलिफ्लुअस वॉइस एंड आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू विश ऑल आर लिसनर्स ऑन joining in to Parikrama 100.1 megahertz and at for you we have a selection of news, our discussion segment, Dateline India, reports, capsules, business tributes and much more. All these over the next 30 minutes, but we begin with the news headlines first. The headlines: Israel warns Lebanon's Hezbollah militant group as it joins Palestinian Hamas attack. Over 500 people killed on both sides so far.
Afghanistan mein tez bhukamp se marne walon ki sankhya 2000 se adhik ho gayi hai.
Interministerial committee to visit flash flood hit Sikkim today to assess damages and provide assistance.
वायुसेना ने आज अपनी 91वीं वर्षगांठ पर अपने नए ध्वज का अनावरण किया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शुभकामनाएं दी।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह टू एम्बार्क ऑन इटली एंड फ्रांस विजिट फ्रॉम टुमारो।
और आईसीसी विश्व कप में भारत का पहला मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ चेन्नई के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में जारी।
And now it's time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking a place at the national and global level. Today we'll talk about the Indian Air Force Day.
वायुसेना आज अपना 91वां स्थापना दिवस मना रही है। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। इसी दिन को याद करते हुए हर साल भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में यह दिन मनाया जाता है। इस वर्ष के वायुसेना दिवस की थीम है एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज। वायुसेना दिवस को आधिकारिक तौर पर पहली बार 8 अक्टूबर 1932 को मनाया गया था। वर्ष 1932 में वायुसेना की स्थापना के बाद से ही भारतीय वायुसेना की उपलब्धियों का एक उल्लेखनीय इतिहास रहा है। आजादी के बाद 1 अप्रैल 1954 को सुब्रतो मुखर्जी को भारतीय वायुसेना का पहला वायुसेना प्रमुख नियुक्त किया गया था। और अगर हम देखें कि आदर्श वाक्य हम बात करें तो नभ स्पर्शम दीप्तम, ये वायुसेना का आदर्श वाक है। इसका अर्थ है गर्व के साथ आकाश को छूना। वायुसेना के इस ध्येय वाक्य को भगवद गीता के 11वें अध्याय से लिया गया है। ये महाभारत के महायुद्ध के दौरान कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश का एक अंश है। इसी आदर्श वाक्य के साथ भारतीय वायुसेना अपने कामों को अंजाम देती है। भारतीय हवाई क्षेत्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाते हुए भारतीय वायुसेना ने युद्धकाल में अपने अद्वितीय शौर्य और पराक्रम से दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए।
That's right, the mighty force protecting India's sky space, Indian Air Force, came into existence as the Royal Indian Air Force on the 8th of October 1932. The day is marked with the organization of a grand parade and celebrations across the nation. On this day, IAF personnel who protect India's skies are honored for their dedication, bravery and professionalism. Not only this, Indian Air Force showcases its prowess in the sky by conducting grand air shows at different locations of the country. On this day, several programs are conducted including aerial displays, rallies, parades and ceremonies. Siddharth, मैं एक air parade में गया था।
जी जी।
And जो उनका amazing skill है, बिल्कुल ही विदिन अ फ्यू फीट से आसपास निकलते हैं, बिल्कुल रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
वो आपके पास आता है, उसके बाद अगर सुखोई की हम बात करें तो एकदम से वो अदृश्य हो जाता है आसमान पर। उसकी जो आवाज है वो आपको सुनाई देती है। और ये भी बता दें अपने सुनने वालों को कि आज प्रयागराज में वायुसेना ने अपनी शक्ति और शौर्य का शानदार प्रदर्शन किया। प्रयागराज में संगम क्षेत्र में एयर शो का आयोजन किया गया। आज चेतक, चिनूक, डकोटा, तेजस, मिराज, सुखोई 30, मिग 21 ने भी फ्लाई पास्ट ब्लास्ट में हिस्सा लिया। आज भारतीय वायुसेना ने अपने नए ध्वज का भी अनावरण किया। सूर्य किरण एरोबैटिक की टीम पहली बार आज उसने अपने शौर्य का प्रदर्शन किया
वहां पे। This year the theme of the IAF Day is IAF Air Power Beyond Boundaries. The theme highlights the commitment of the force towards excellence, innovation and its role as the guardian of the nation's skies. Chief of Air Staff, Air Chief Marshal V.R. Chaudhary unveiled the new IAF ensign at the parade. The CAS also presented the coveted unit citations to four IAF units, namely 16 Squadron, 142 Helicopter Unit, 901 Signal Unit and 3 Base Report Depot for the exemplary contribution to the service. Speaking on the occasion, CAS Air Chief Marshal V.R. Chaudhary said that we need to understand the nuances of the evolving air power setting, the pace to preserve peace, if and when necessary to fight and win wars. Innovation must become a part of our DNA, enabling us to easily adapt to emerging threats and challenges. The CAS added that this year the Indian Air Force carried out 8 exercises across the globe with friendly foreign countries and performed exceptionally well.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वायुसेना दिवस के अवसर पर सभी वायु योद्धाओं और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दी।
1947 जब पाकिस्तान के हमलावरों ने एक अप्रत्याशित हमला शुरू किया तो यह वायुसेना ही थी जिसने श्रीनगर को हमलावरों से बचाने के लिए यह सुनिश्चित किया कि भारतीय सैनिक और उपकरण युद्ध के मैदान तक समय पर पहुंचे।
सेना की ताकत ऐसी है कि जब भी कोई टेढ़ी नजर हमारी तरफ उठाता है तो उसको उसी भाषा में जवाब देने का जज्बा,
राहत एवं बचाव कार्य हो या फिर आपदा प्रबंधन, हमारे एयर वॉरियर्स उनके सराहनीय कार्य को लेकर देश वायुसेना के प्रति कृतज्ञ है। तूफान, बवंडर, बाढ़ से लेकर जंगल की आग तक की प्राकृतिक आपदा से निपटने और देशवासियों की मदद करने का उनका जज्बा अद्भुत रहा। 6 पायलट और 19 वायु सैनिकों के साथ एक छोटी सी शुरुआत से बढ़ते हुए हमारी वायुसेना आज 21वीं सदी की सबसे साहसिक और शक्तिशाली एयरफोर्स में शामिल हो चुकी है।
चीफ ऑफ एयर डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने भारतीय वायुसेना दिवस के अवसर पर सभी वायु योद्धाओं, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। ये महत्वपूर्ण अवसर एक सदी तक भारतीय वायुसेना के राष्ट्र के प्रति अटूट समर्पण और अद्वितीय सेवा को दर्शाता है। इस अवसर पर हम उन बहादुरों को भी श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने राष्ट्र की सेवा में अंतिम बलिदान किया। उनकी साहस, वीरता और समर्पण भारत की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी।
That's right, the IAF has played an important role in all wars fought by the country, undertaken punitive air strikes, extricated the Indian diaspora from conflict zones and provided relief through humanitarian assistance and disaster relief HADR missions within and beyond the borders. The IAF has a rich history of regular and successful engagements in international air exercises with friendly countries.
और अगर हम देखें तो विसी जो आगे आने वाली जितनी भी लड़ाई, अगर हम एयरफोर्स की बात करें तो आजकल जिस तरह से टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है और हमारा देश इस समय आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहा है, तो ऐसे में जो स्वदेशी रक्षा उत्पादन है वो एक बड़ी चीज हो जाती है। और आज हम बहुत सारे ऐसे डिफेंस प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम दूसरे देशों को निर्यात भी कर रहे हैं, दूसरे देशों पर हमारी जो निर्भरता है वो कम हुई है, तो भी एक बड़ी बात है आज एयरफोर्स डे पे याद करने के लिए।
जी, the IAF is poised to embrace the challenges of the 21st century with a commitment to modernization, innovation and international cooperation. On this 92nd IAF day, let us all stand together in honoring the IAF and expressing our gratitude to the men and women who soar high to protect our skies and secure our future. It will continue to be a symbol of our nation's strength and resolve. May the IAF reach new heights of glory always.
और आइए हम सभी मिलकर आज अपने जो भी वायुदूत हैं उनको आज हम सैल्यूट कर रहे हैं। स्टूडियो से तो हम सैल्यूट कर ही रहे हैं। मैं देख पा रहा हूँ विसी की आपने पूरे आपके हाथ सैल्यूट की मुद्रा में हैं और हमें सुनते हुए पूरा देश और खासतौर से इस समय जो लोग हमें सुन रहे हैं वो भी उन्हें सैल्यूट कर रहे हैं।
एब्सोल्युटली।
और श्रोताओं, कार्यक्रम परिक्रमा में अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या कुछ विशेष समाचार हैं।
That's right, I'll take you to श्रीनगर सिद्धार्थ। इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर द मच अवेटेड सेकेंड एडिशन ऑफ सारस आजीविका मेला सेट टू मेजमराइज विजिटर्स इन श्रीनगर वुड कमेंस फ्रॉम टुमारो द 9th ऑफ अक्टूबर। Entry to the fair is free for all and it will be open from 11 a.m. to 9:30 p.m. on selected dates. The event strictly abides by green protocols, promoting the use of cloth bags and paper bags exclusively. The event is being organized by the Jammu and Kashmir Rural Livelihoods Mission, JKRLM, Department of Rural Development and Panchayati Raj. This 10-day extravaganza promises a vibrant celebration of air, art, craft, culture and cuisine, resonating with the essence of vocal for local. To know more, let's listen to our Srinagar correspondent.
The tourists can anticipate an impressive showcase of talent as over 200 skilled rural women artisans from 17 different states across India will proudly display their exquisite handicrafts, handloom creations and regional culinary delights at Umeed Women's Heart Boulevard, Dalgate in Srinagar. Participation has been confirmed from states including Telangana, Chhattisgarh, Gujarat, Madhya Pradesh, Odisha, Punjab, West Bengal, Karnataka, Uttar Pradesh, Maharashtra and Meghalaya for Saras Ajivika 2.0. The fair serves as a direct marketing platform for rural entrepreneurs, empowering them to sell their products without any intervention. This unique opportunity allows rural artisans, craftsmen and self-help group beneficiaries from all over India to showcase and directly sell their products to customers, thereby augmenting their income and gaining significant exposure. The gala event will enable the visitors to relish a delightful assortment of handloom and handicrafts featuring Kantha cities from West Bengal, silk suits from Uttar Pradesh, handloom from Bihar, hygienic dry apricots and velvet fabric from Ladakh, decorative items from Karnataka and handcrafted jewelry from Punjab. The event will also host a dedicated food zone where SHG members will tantalize taste buds with delectable treats such as saag makki ki roti, kheer and chaat. Moreover, a separate kid-friendly area promises a memorable experience for young children. Throughout the duration of Saras Mela 2.0, the local artists will enthrall art enthusiasts with captivating performances showcasing rich cultural heritage of Jammu and Kashmir. The fair strives to promote the art, culture and traditions of J&K with a particular emphasis on engaging and inspiring the youth of the Union Territory. For Parikrama, this is Sunil Kohl from Srinagar, Kashmir.
Sri Lanka is known for its beautiful tea gardens, which have given the world the much acclaimed Ceylon tea. We have a report.
The Indian origin Tamils, who work as tea plantation workers in these tea estates, have difficulty in getting primary health care in many places. To ensure that these IOTs have access to basic health care, India had constructed a full-fledged hospital in the central province at Dikoya in Nuwara Eliya district in Sri Lanka. Constructed at a cost of 1.2 billion Lankan rupees, the hospital and quarters complex was inaugurated by Prime Minister Narendra Modi and Sri Lanka President Maithripala Sirisena in 2017. Since then, the IOT community has been benefited by the hospital in big numbers. On an average, the hospital has over 25,000 admissions every year, with over 2,000 major surgeries conducted annually. The hospital has well-equipped wards, ICU facilities, laboratory and radiology department, which have provided the patients with the necessary care. Where the Indian origin Tamil community has had difficulty in accessing healthcare facilities, the Indian project of Dikoya-based hospital has emerged as a solace, bringing dignity to the lives of these plantation workers. For Parikrama, Ahmed Moin Farooqi from Nuwara Eliya.
Today is World Dyslexia Awareness Day. The day is observed every year on the 8th of October to shed light on dyslexia, a learning difference that affects millions of individuals worldwide. The Dyslexia Awareness Week is celebrated annually from the 2nd to the 8th of October. Persons with dyslexia might struggle with reading, writing, vocabulary and tasks that require hand-eye coordination. World Dyslexia Day aims to promote inclusivity, access to education and implementation of effective strategies to support individuals with dyslexia in their learning endeavors. More from our correspondent.
The theme for this year's Dyslexia Awareness Day is Uniquely You. This theme aims to celebrate the diversity of people within the dyslexic community. Dyslexia is a common learning disorder that affects a person's ability to read and write properly. Skills such as reading and writing fluently are an area of challenge for those who have dyslexia. Treatment for dyslexia should focus on the specific learning problems of affected individuals. Generally, treatment includes modifying teaching methods and the educational environment to meet the specific needs of the individuals with dyslexia. The Department of Empowerment of Persons with Disabilities under the Ministry of Social Justice and Empowerment is the nodal department to look after all the development agenda of persons with disabilities in the country. With a vision to create awareness about dyslexia among the masses, the department is observing World Dyslexia Day today through the institutions associated with by conducting various events across the country. Arpita Chaudhary for Parikrama, Delhi.
And now it's time to listen to yet another chapter from India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
October 8 is the death anniversary of a great freedom fighter, revolutionary and crusader, Jayaprakash Narayan, who was popularly called JP. It is said the nationalist leader, Maulana Abul Kalam Azad's call to lift up to the skies like leaves before a storm drew JP to the freedom movement. Maulana Azad had called for giving up English education. Jayaprakash took his words to heart and left Patna College with just 20 days remaining for his examination and joined Bihar Vidya Peeth, a college run by the Congress. After completing his course, he decided to go to the United States for further studies, where he took up odd jobs to pay for his college fee. As a result, he developed a natural affinity towards the working class, which remained all through his life.
JP, also known as Lok Nayak, returned to India in 1929 and called upon the people to take advantage of the World War II to stop the British exploitation of India and to overthrow the colonial government. He protested against the recruitment of Indian soldiers for the British Army and was imprisoned for 9 months. After his release, he met Mahatma Gandhi and Subhash Chandra Bose.
JP joined the Congress at the invitation of Pandit Jawaharlal Nehru. He was also a member of the Congress Socialist Party, which worked underground to promote the campaign for freeing India from British rule. He actively participated in the freedom struggle and led the Quit India movement in 1942 when all the senior leaders had been arrested. He, too, was soon arrested under the Defense of India Rules, a preventive detention law that did not require trial. He was put in the Hazaribagh Central Jail. JP and his fellow prisoners planned to escape from the jail. Their chance came soon on Diwali in November 1942 when a large number of guards were on leave because of the festival. It was a daring escape which made JP a folk hero.
After nearly 1 year of hunt, JP was arrested in Amritsar on September 18, 1943, while on his way to Rawalpindi to meet Frontier Gandhi, Khan Abdul Ghaffar Khan. He was taken to Lahore Fort, which was notorious as a torture chamber. 16 months of mental and physical torture followed. JP was put in solitary confinement for the first month. This was followed by interrogation, physical torture and humiliation. In January 1945, he was transferred from Lahore Fort to Agra Jail. When Mahatma Gandhi insisted that he would begin negotiations with the British rulers only after an unconditional release of Ram Manohar Lohia and Jayaprakash, they were released on 12th April 1946. JP breathed his last on 8th October 1979 in Patna. He dedicated himself totally to Mahatma Gandhi's ideal of Sampurna Swarajya or total revolution.
Unch neech par aadharit jati pratha ko khatm kiya jaye. Ab samay aa gaya hai is kalank ko mita de aur bhai chare aur samanata ko apna aadarsh banaye. और अपने जीवन में उतारें। इसी तरह शादी, जन्म, मृत्यु से जुड़े हुए भी कुछ और बुरे रिवाज हैं। संपूर्ण क्रांति के द्वारा इन्हें भी खत्म किया जाना चाहिए.
जेपी पर्स्यूड हिज एफर्ट्स टुवर्ड्स पीपल्स पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस एंड करप्शन फ्री वैल्यू बेस्ड पब्लिक लाइफ. हिज इंटेग्रिटी, टावरिंग रेपुटेशन एंड हिज सेल्फ इफेसिंग सिंप्लिसिटी endeared him to the nation.
That brings us to the end of this episode of Azadi Ka Safar. See you in the next episode tomorrow.
और अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल. और सबसे पहले बात करते हैं एशियाई खेलों की.
चीन में हांगचू एशियाई खेल आज संपन्न हो रहे हैं. समापन समारोह आज शाम 5:30 बजे शुरू होगा. हॉकी टीम के गोलकीपर पीआर श्रीजेश भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे. इन खेलों में भारत 28 स्वर्ण 38 रजत और 41 कांस्य सहित कुल 107 पदक जीतकर चौथे स्थान पर रहा. इस बार 100 पार के लक्ष्य के साथ एशियाई खेलों में भारतीय एथलीट्स ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए लक्ष्य से भी कहीं अधिक पदक भारत को दिलाए. भारत ने खेलों के 14वें दिन कल 6 स्वर्ण 4 रजत और 2 कांस्य पदक सहित कुल 12 पदक जीते. भारत को ऐतिहासिक 100वां मेडल महिला कबड्डी में स्वर्ण पदक के रूप में मिला. देश को सबसे अधिक 29 पदक एथलेटिक्स में मिले हैं. भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण और किशोर कुमार जेना ने रजत पदक जीता. पारुल चौधरी और अविनाश साबले का दौड़ में प्रदर्शन, तजिंदर पाल सिंह तूर का शॉटपुट खिताब, 4x400 मीटर रिले टीमों का शानदार प्रदर्शन और तेजस्विन शंकर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ डेकाथलॉन और ट्रैक एंड फील्ड के यादगार क्षण इन एशियाई खेलों के साक्षी बने. निशानेबाजी में भारत ने 7 स्वर्ण सहित 22 पदक जीते. ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर की अगुवाई में सिफत कौर, सामरा और पुरुषों की 10 मीटर राइफल टीम ने विश्व रिकॉर्ड बनाए. भारतीय क्रिकेट और कबड्डी टीमों ने भी स्वर्ण पदक हासिल किए. पुरुष हॉकी में भारत ने स्वर्ण पदक जीतकर पेरिस ओलंपिक का कोटा स्थान हासिल किया. महिला हॉकी टीम को कांस्य पदक मिला. बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने पहली बार पुरुष डबल्स का स्वर्ण पदक जीता. इस जीत के साथ सात्विक और चिराग BWF विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गए हैं. HS प्रणॉय ने चोट के बावजूद शानदार प्रदर्शन किया और कांस्य पदक हासिल किया. टेनिस में रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोंसले ने मिक्स डबल्स का स्वर्ण पदक जीता. स्क्वाश में दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल सिंह संधू ने एशियाई खेलों के इतिहास में पहली बार मिक्स डबल्स का स्वर्ण पदक जीता. तीरंदाजी में भारत ने 9 पदक हासिल किए हैं. ज्योति सुरेखा वेन्नम ने एशियाई खेलों का रिकॉर्ड बनाते हुए महिला कंपाउंड का स्वर्ण पदक जीता. भारत के कंपाउंड तीरंदाजों ने भी सोना जीता. भारत ने 41 वर्षों में पहली बार घुड़सवारी में स्वर्ण पदक हासिल किया. मुक्केबाजी में लवलीना बुरगोहाई ने रजत पदक जीतकर पेरिस ओलंपिक का कोटा स्थान सुरक्षित किया. साथ ही निकहत जरीन, प्रीति पवार तथा परवीन हुडा ने भी ओलंपिक कोटा स्थान हासिल किए. गोल्फ में अदिति अशोक ने पहली बार रजत पदक जीता. पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती में दीपक पूनिया को रजत पदक मिला. शतरंज में भारतीय पुरुष और महिला टीमों ने भी रजत पदक जीते. भारत ने रोइंग, सेलिंग, वुशू, रोलर स्केटिंग, डेंगी और ब्रिज में भी पदक जीते हैं. एशियाई खेलों के इतिहास में भारत का अब तक का ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है. इन खेलों के समापन के साथ ही भारतीय एथलीट अगले वर्ष होने वाले पेरिस ओलंपिक की तैयारियों में जुट जाएंगे. परिक्रमा के लिए मैं मुकेश कुमार.
धन्यवाद मुकेश. और ICC विश्व कप की अगर हम बात करें तो इसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच जारी है. और अगर ताजा समाचार देखें तो ऑस्ट्रेलिया जो है इस समय बैटिंग कर रहा है और 35 ओवर 3 गेंद का खेल समाप्त हो चुका है. 5 विकेट पर 140 रन ऑस्ट्रेलिया ने बनाए हैं. और ये फिलहाल यहां का ताजा अपडेट था. और खेल के बाद अब करते हैं बात उन महान लोगों की जिनकी आज जयंती या पुण्यतिथि है. और आज ही पुण्यतिथि है हिंदी भाषा के सुप्रसिद्ध साहित्यकार धनपत राय श्रीवास्तव की, जिन्हें हम मुंशी प्रेमचंद के नाम से जानते हैं. अपने 5 दशक लंबे साहित्यिक जीवन में उन्होंने एक से बढ़कर एक रचनाएं लिखी. प्रेमचंद का जन्म वाराणसी से लगभग 4 मील दूर लम्ही नाम के गांव में 31 जुलाई 1880 को हुआ था. बचपन में वो बहुत नटखट थे. प्रेमचंद उनका साहित्यिक नाम था और बहुत वर्षों बाद उन्होंने ये नाम अपनाया था. उनका वास्तविक नाम धनपत राय था. जब उन्होंने सरकारी सेवा करते हुए कहानी लिखना शुरू किया तब उन्होंने नवाब राय नाम अपनाया. जब ब्रिटिश सरकार ने उनका पहला कहानी संग्रह सोजे वतन जब्त किया तब उन्हें नवाब राय नाम छोड़ना पड़ा. मुंशी प्रेमचंद की प्रमुख रचनाओं में बड़े घर की बेटी, सौत, सज्जनता का दंड, पंच परमेश्वर, नमक का दरोगा, उपदेश, परीक्षा बेहद चर्चित रही और विसी हम सभी ने जब अपनी पढ़ाई के दौरान प्रेमचंद के बहुत सारे उपन्यास और कहानियों को पढ़ा है। और अगर बात करें इतिहास की, 1931 के आरंभ में गबन प्रकाशित हुआ था जो बेहद लोकप्रिय हुआ। 1936 में उनका बहुचर्चित उपन्यास गोदान प्रकाशित हुआ जिसे पाठकों ने बेहद बेहद पसंद किया।
That's right. मुझे सिद्धार्थ शतरंज खिलाड़ी वो मूवी बहुत पसंद है और मैंने पढ़ा भी है वो नॉवल।
जी, तो 1977 में इस शतरंज के खिलाड़ी के ऊपर एक फिल्म भी बनी थी जो कि सुपर डुपर हिट रही और सुप्रसिद्ध निर्देशक सत्यजीत रे ने इसका निर्देशन किया था। शतरंज के खिलाड़ी को 3 फिल्मफेयर पुरस्कारों के अलावा 1978 के बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हाइएस्ट प्राइज अवार्ड गोल्डन बियर अवार्ड से नवाजा गया था। तो आइए सुनते हैं शतरंज के खिलाड़ी फिल्म का ये गीत पंडित बिरजू महाराज की आवाज में, कान्हा में तो से दोरी।
कान्हा में तो से हरे छोड़ो हरे, कान्हा में तो से हरे छोड़ो हरे, कान्हा में तो से हरे छोड़ो हरे। सुनो बिहारी, नहीं मैं दूंगी तोहे गरी, सुनो बिहारी, नहीं मैं दूंगी तोहे गरी, कान्हा में तो से हरी।
Today is the death anniversary of a famous cinematographer, director, screenwriter, film editor and also a part-time actor who worked in various Indian film industries, primarily in Tamil and Malayalam cinema. His name was Balanathan Benjamin Mahendran and he was popularly known as Balu Mahendru, and he was born in Sri Lanka and he developed a passion for photography and literature at a young age, and he did his course of cinematography from the FTII Pune, and he was thoroughly influenced by David Lean's The Bridge on the River Kwai. And Siddharth, agar aapne Hindi film Sadma dekhi hai, Kamal Haasan aur Sridevi ki,
bahut hi favorite movie,
and uska jo last scene hai wo kitna touching hai
ji,
to usi film ka ek gana hai hamare paas, let's listen to that.
Turmai akhiyon mein nanha munna ek sapna de ja re, turmai akhiyon mein नन्हा मुन्ना एक सपना दे जा रे, बिंदिया के उड़ते आखिरे अखियों में आ जाता तेरे।
और श्रोताओं, आज ही जन्मदिन है बॉलीवुड के उस कलाकार की जिसने अपनी बुलंद आवाज और अभिनय के दम पर अपनी अलग पहचान बनाई और उनके संवाद इतने मशहूर हुए कि आज भी लोगों की जबान पर हैं।
प्रोफेसर, तुमने यहां जो कुछ सुना और देखा वो राज तुम्हारे होठों के पर्दे में बंद रहेगा वरना मिटा दिए जाओगे।
हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। तेजा,
ये काम सिर्फ राजा कर सकता है।
और राजा ना करे
तो राजा, मैं जितनी मोहब्बत करता हूँ उतनी नफरत भी कर सकता हूँ।
मोहब्बत और नफरत, जिनाय सेठ जिनके अपने घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते।
जी हम बात कर रहे हैं अभिनेता राजकुमार की, जिनका असली नाम कुलभूषण पंडित था। वे पुलिस सब इंस्पेक्टर की नौकरी छोड़कर फिल्म इंडस्ट्री में आए थे और 26 साल की उम्र में उनकी पहली फिल्म रंगीली रिलीज हुई और उसके बाद मदर इंडिया, हमराज, हीर रांझा और नील कमल जैसी करीब 70 से ज्यादा फिल्मों में राजकुमार ने अभिनय किया। आई सुनते हैं फिल्म नीलकमल का ये गीत, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की।
ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया ये
श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। आपकी एक बेहतर शाम की शुभकामनाओं के साथ अनुमति दीजिए सिद्धार्थ सिंह और वीसी प्रमोद को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग इन करिए हमारी वेबसाइट newsoneair.com पर। इसके साथ ही हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।